سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب زدنا علما، ربنا زدنا علما. कल हमने ये पेज नंबर 81 के ऊपर पढ़ लिया था पहला पैराग्राफ. इनसे शुरू करते हैं कि फरमाते हैं कि इस आयत के आखिर में इन अल्लाह कान अलीमन हकीमा फरमाकर इस हुक्म की हिकमत बयान कर दी गई जो ऊपर दिया गया है कि अल्लाह से डरें और कुफार मुनाफिकीन का कहना ना माने, क्योंकि अवाकिब उमूर और नतायज का जानने वाला अल्लाह ताला बड़ा हकीम है, वही मसालेह इबाद को जानता है, यानी इसके बंदों की मसलहतें किन कामों के अंदर हैं ये हमसे ज़्यादा बेहतर हमारा परवरदिगार जानता है. ये इसलिए फरमाया कि कुफार या मुनाफिकीन की बाज़ बातें ऐसी भी थीं जिनसे शर और फसाद कम होने और बाहिमी रवादारी की फ़ज़ा कायम होने वगैरह के फ़वाद हासिल हो सकते थे, मगर हक ताला ने इससे मना फरमाया कि इन लोगों के साथ ये रवादारी भी मसलहत के खिलाफ है, इसका अंजाम अच्छा नहीं है. ठीक है, तो अल्लाह ताला कॉमन सेंस के ऊपर चीज नहीं छोड़ते, जिसको इंसान कॉमन सेंस समझता है, क्योंकि ये कॉमन सेंस तो पहले से मौजूद था. ठीक है, इवन ये जो यानी कुफार मक्का के जो सरदार थे, ठीक है, जो कुरैश मक्का के सरदार थे, तो ये लोग इस किस्म के मामला पहले से तय करते थे. मामला फहमी, जिसको मामला फहमी कहते हैं, ये तो उस माशरे में मौजूद थी ना, ये कोई बेवकूफ़ लोग तो नहीं थे ना. ठीक है ना, ये कोई यानी जो हमने बचपन में लिलीपुतियंस की कहानी पढ़ी थी, याद है किसी को लिलीपुतियंस की कहानी? ठीक है, छोटे छोटे वो बौने होते थे, छोटे छोटे बिल्कुल मखलूक होती थी, और वो गैलीली क्या नाम था उनका, उस साहब का गैलीलियो नाम था, ये क्या था, जो कि उसके लिलीपुतियंस के इलाके में चला गया था. तो अब वो लिलीपुतियंस जो है वो छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे. ठीक है, यानी कि अंडे को जो है वो इधर से तोड़ा तो लड़ाई हो गई उनमें. ठीक है, और वह पता नहीं कितने संजीदा किस्म की लड़ाई शुरू हो गई. तो ऐसे लोग ये नहीं थे कि ऐसी बेवकूफ़ी की हरकतें करते हो, बड़े मामला फहम किस्म के लोग थे, बड़े जो है वो यानी अबू जहल जो था वो तो अबुल हकम कहलाता था, अबुल हकम हिकमत का बाप कहलाता था. तो अल्लाह ताला ना इस हमारी जो हिकमत होती है, हमारी अपनी जो मामला फहमी होती है, उसके ऊपर मामले को नहीं छोड़ देते, बल्कि ऊपर से इंस्ट्रक्शंस देना. ठीक है, ये उसूल बनाया, ये तरीका बनाया कि ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, ठीक है, उसके मुताबिक तुम काम करो. तो यहाँ पर भी नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इसी तरीके से ऐसे नहीं किया कि दुनिया में डाल के छोड़ दिया. ठीक है ना, फिर दुनिया में डाल दिया, अब देखते हैं कि भी क्या करते हैं ये. ठीक है ना, अब ऊपर से बैठ करके तमाशा देखते हैं कि जी अब ये किस मामले में क्या करते हैं, किस मामले में क्या करते हैं. ऐसा तो अल्लाह ताला ने किसी के साथ भी नहीं किया, अपने नबी के साथ ऐसा नहीं किया. ठीक है, कि बगैर हिदायत के, बगैर इंस्ट्रक्शंस के नबी को छोड़ दिया. जब बगैर इंस्ट्रक्शंस के नबी को नहीं छोड़ा, तो फिर हमारे जैसे इंसानों को अल्लाह ताला बगैर इंस्ट्रक्शंस के हमारी अपनी सवाबदीद के ऊपर कैसे छोड़ दे. ठीक है, कि जैसे चाहो अमल करो. तो फरमाया इसके आगे कि वत्तबिअ मा युहा इलैका मिन रब्बिक. ठीक है, जो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आनी है, मा युहा इलैका को कैसे ट्रांसलेट करेंगे हमारी आम जुबान के अंदर, इंग्लिश प्लस उर्दू, इंग्लू जो जो हम बोलते हैं सारे के सारे, तो उसमें कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि इत्तबा करो जो इंस्ट्रक्शंस तुम्हारे पास ऊपर से आई हैं, उनकी इत्तबा करो. ठीक, तो अपनी अकल फहम के मुताबिक जो है वो सारे फैसले ना करो. मिन रब्बिका, तुम्हारे रब की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं, इन अल्लाह कान बिमा तअमलूना खबीरा, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे अमलों से के बारे में खबीर है, वो देख रहा है. लेकिन देख रहा का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ देख रहा है, बल्कि ही इज इंटरफेयरिंग. ठीक है ना, ही इज इंटरफेयरिंग, वो इंटरफेयर करता है तुम्हारे मामलात के अंदर. ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन ऊपर से भेजता है. हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं नो इंटरफेरेंस, वी डोंट अलाउ एनी वन टू इंटरफेयर इन आवर लाइफ. ठीक है ना, अब इसमें हम अपने दुश्मनों को तो इजाजत नहीं देते, ठीक है ना, जो कि देनी भी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला ने खुद मना कर दिया. ठीक है ना, कि अपने दुश्मनों की बात ना मानना, लेकिन हम इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी इंटरफेरेंस मना कर देते हैं, डिसअलाउ कर देते हैं, उनकी इंटरफेरेंस भी डिसअलाउ कर देते हैं, खैर ख्वाहों की इंटरफेरेंस भी डिसअलाउ कर देते हैं, राइट, नेकों की इंटरफेरेंस भी डिसअलाउ कर देते हैं, मशाइख की इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस भी डिसअलाउ कर देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम, हैंड्स ऑफ, ठीक है ना, कीप योर हैंड्स ऑफ मी, यही कहते हैं ना कि अपने हाथ जो है वो मुझसे परे रखो, अपनी नसीहतें अपने पास रखो, ठीक है ना, मुझे कुछ ना कहना, अगर कहोगे ना तो मैं आना छोड़ दूंगा, यही कहते हैं ना, अगर कहोगे तो मैं आना छोड़ दूंगा, ज्यादा से ज्यादा यानी बल्कि कम से कम क्या धमकी देते हैं, कम से कम धमकी ये होती है कि अगर हमें हमारे साथ तुम कुछ वाजो नसीहत वाला मामला करोगे डायरेक्टली, ठीक है ना, बयान में तो माशाल्लाह मजे चल रहे होते हैं ना, बयान में तो आते हैं सारे के सारे यही सोच रहे होते हैं कि बराबर वाले के लिए बयान हो रहा है, राइट, मेरी सास के लिए बयान हो रहा है, मेरी बीवी के लिए बयान हो रहा है, बीवियां सोचती हैं मेरे शोहर के लिए बयान हो रहा है, राइट, तो बयान में तो कोई मसला ही नहीं है, उसमें तो वैसे ही जो है वो माशाल्लाह लॉलीपॉप खिलाई जा रही होती है सबको, है ना, तो इस वजह से बयान में तो आसानी से फिर भी आ जाते हैं, राइट, और फिर भी वो वहां उस बयान में जाते हैं जहां पर के जरा मीठे मीठे लड्डू खिलाए जा रहे हो, जरा वजायफ वगैरह के बारे में बातें हो रही हो, जरा मोहब्बतों के बारे में बातें हो रही हो, तो उन बयान के अंदर और ज्यादा जाते हैं, ठीक है ना, जम्मे गफीर जो है वो लग जाता है ऐसे बयान के अंदर, लेकिन जरा जहाँ जरा कड़वी कसैली सुनाई जा रही हो, जहाँ पे जरा अपने गंदी आदतें बुरी आदतें जो है वो जरा खोल के बयान की जा रही हो कि जी ये आदतें जो है ना इनकी वजह से तुम्हारे ऊपर अजाब आया हुआ है, इन आदतों को छोड़ोगे तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे, ठीक है ना, वहां पे आना ही छोड़ देते हैं, वहां पे देखें वहां पे ज्यादा रश नहीं लगा होता ऐसी जगहों के ऊपर, ठीक है, बल्कि हमारा तजुर्बा यही है कि जब हम कभी कोई ऐसा बयान कर देते हैं ना जिसके अंदर मोहब्बत और प्यार की बातें होती हैं तो आगे से थपकियां भी मिलती हैं, ठीक है ना, आगे से जो है वो वाहवा भी होती है कि जी आज आपका बयान बड़ा अच्छा था, ठीक है, क्यों अच्छा था, इसलिए कि माशाल्लाह आपने कोई ऐसी बात ही नहीं करी जिससे कि हमें कुछ खिलबिली में हमारे अंदर खिलबिली मचे, राइट, हमें जो है वो कुछ गरेबान में झांकने की जरूरत महसूस हो जाए, तो आपने आज ऐसी कोई बात नहीं करी तो आज आपका बड़ा बयान बड़ा अच्छा था, ठीक है, उस दिन तो आप बड़ा डांट रहे थे, ठीक है ना, तो क्या वजह होती है, इसकी वजह ये होती है कि वी डोंट वांट एनी इंटरफेरेंस इन आवर लाइव्स, ठीक है, हम जो है वो अपनी मन मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं और फिर भी चाहते हैं कि हम जन्नतुल फिरदौस के अंदर भी आला मकामात हासिल कर लें, राइट, और जहन्नम से भी बच जाएं, ना दुनिया में हमें कोई तकलीफ हो, ना हमें मरने के बाद कोई तकलीफ हो, और ना हमें जो है वो रोज़े हशर कोई तकलीफ हो, और ना हमें फिर क़यामत के दिन यानी जहन्नम में कोई तकलीफ हो, तो भाई क्या है फारसी का वो बिसरा बोलते हैं ना कि क्या ई ख्याल अस्त तो महाल अस्त, ये ख्याल जो है ना ये महाल है, ये होने नहीं वाला है इस तरीके से, तो भाई इंटरफेरेंस को बर्दाश्त करना पड़ता है, लोगों की जो नसीहतें होती हैं, लोगों की जो खसूसन जो हमारे खैर ख्वाह होते हैं उनकी रोक टोक को जब सब्र के साथ सुनते हैं और इस्लाह की नीयत के साथ सुनते हैं, इस्लाह के इरादे के साथ सुनते हैं, तब फायदा होता है, वरना 8 साल भी अगर आप पढ़ते रहेंगे ना तफसीर की किताबें, है ना, हम ऐसे लोगों को जाती तौर पर जानते हैं, 8-8 साल उन्होंने तफसीर सुनी है कुरान मजीद की, ठीक है, लेकिन 8वें साल में जाकर के जो खुल के सामने आए तो पता चला कि इनका बाल भी बीका नहीं हुआ था, ठीक है ना, टस से मस होना जिसको कहते हैं ना, टस से मस नहीं हुए थे, ठीक है ना, जो ख्यालात इनके शायद 8 साल पहले थे ना वही ख्यालात 8 साल के बाद ही हैं, ठीक है ना, बुखारी शरीफ भी पढ़ रहे हैं, मुस्लिम शरीफ भी पढ़ रहे हैं, तफसीरें भी पढ़ रहे हैं, मिशकात शरीफ भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन टस से मस नहीं हुए, बाल भी नहीं बीका इन सब बातों को सुन करके, ठीक है, तो ऐसा जो है ना वो हमारे अपने स्टूडेंट्स के साथ भी होता है और हमने हजर जी के स्टूडेंट्स के साथ भी यही होता हुआ देखा, ठीक है ना, इतना लंबा अरसा हजर जी के साथ लगे रहे, टस से मस नहीं हुए, बाल भी बीका नहीं हुआ, ठीक है ना, बल्कि उल्टा जो है वो शेख के दुश्मन ही बन गए, हैं, ऐसा भी वक्त आया कि अल्लाह ताला ने फिर बड़ी आजमाइश में मुब्तला कर दिया और उल्टा शेख के दुश्मन बन गए, ठीक है ना, तो क्या हुआ ये सब कुछ, इतने सालों से जो रो धो रहे थे प्यारे प्यारे नज़में सुन सुन करके और अशआर सुन सुन करके जो रो धो रहे थे, उस रो धो रोने धोने का क्या फायदा हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ ना, ठीक है, तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में एक फिक्रा लिखा है कि जो शख्स ना मानना चाहे ना तो उसका तो उसको तो नबी भी फायदा नहीं पहुंचा सकता, वक्त का नबी भी उसको फायदा नहीं पहुंचा सकता, ठीक है ना, तो हमारी क्या हैसियत है भाई, राइट, तो भाई अल्लाह ताला ने जो इख्तियार दिया है वो तो हमें खुद दिया है ना कि हम खुद अपने इख्तियार को जैसे इस्तेमाल करेंगे, ये तो नहीं कि ये नबी आ जाएंगे तो हिदायत मिल जाएगी, नबी से हिदायत तो नहीं मिलती है ना, नबी से तो अबू जहल को ना हिदायत मिली, अबू लहब को ना हिदायत मिली, ठीक है, नबी को तो अल्लाह ताला ने बेहतरीन सिफात दे करके बेहतरीन जो है वो रहमत बना करके भेजा, लेकिन जो फायदा उठाना चाहे उसी को फायदा मिला ना। तो इस क्लास के अंदर नहीं ना, ये कुरान की जो क्लास है इसको यानी ये समझें कि ये मेरे लिए जन्नत और जहन्नुम है, ठीक है, जन्नत भी है जहन्नुम भी है, इसलिए कि अगर इसके को मैंने अमल और इरादे की नीयत से सुना तो फिर मुझे फायदा होगा, जन्नत मिल जाएगी, बहुत बड़े बड़े मुकामात मिलेंगे, क्योंकि अल्लाह के कुरान को समझ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसकी इस नीयत के बगैर आई ना इस क्लास के अंदर, तो ये मेरी जहन्नुम ना बन जाए कहीं, ठीक है। इसलिए कि इतना इल्म मिलने के बाद, इतनी समझ मिलने के बाद अगर टस से मस नहीं हुए तो फिर ऐसे तो नहीं छोड़ा जाएगा ना ऐसे बंदे को। हाँ, तो आगे चलें कि ये पहले ही हुक्म का तकमीला है कि आप कुफार और मुनाफिकीन की बातों में ना आए, उनकी बात ना माने, बल्कि जो कुछ अल्लाह की तरफ से आपको बजरिया वही बतलाया गया है बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इसी का इत्तेबा करें। क्योंकि इस खिताब में सहाबा कराम और आम मुसलमान भी शामिल हैं, इसलिए आखिर में बसीगह जमा बिमा तअमलूना फरमाकर तंबीह कर दी गई। हालांकि इब्तिदा जो हुई थी वो या अय्युहन नबियू से इब्तिदा हुई थी, ठीक है ना, एक नबी से बात हो रही थी, लेकिन चूंकि ये बात जो है वो पूरी उम्मत तक पहुंचाना मकसूद है, तो इसकी जो एंड करी ना वो अल्लाह ताला ने बिमा तअमलू ना, तुम सारे के सारे जो अमल करते हो उससे अल्लाह ताला वाकिफ है, ऐसे ऐसे इसका कंप्लीशन करी। आगे वो तवक्कल अल्लाही वकफा बिल्लाही वकीला, कि ये भी इसी हुक्म की तकमील है। इसमें इरशाद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों की बातों पर कान न धरें और अपने मकसद की कामयाबी में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करें कि वही है काफी कारसाज। इसके होते हुए आपको किसी के रवादारी की जरूरत नहीं है, तो लोगों को खुश करने की आपको जरूरत नहीं है एट ऑल कॉस्ट, ठीक है ना। लोगों को खुश जरूर करें लेकिन उस नीयत से कि अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदों के साथ जो है वो नरमी वाला मामला करना चाहिए, अल्लाह के बंदों को माफ कर देना चाहिए, अल्लाह के बंदों को जो है वो को खुश रखना चाहिए, तोहफे तोहफे देने चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर दीन, ठीक है ना। इस कॉस्ट के ऊपर किसी को खुश नहीं करना है, ठीक है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, और खसूसन माँ बाप, खसूसन माँ बाप, इसलिए कि माँ बाप के साथ कैसा ताल्लुक होता है कि इंसान पसीज जाता है, इंसान का दिल पसीज जाता है, इंसान का दिल मोम हो जाता है, ठीक है, खसूसन जब वो बूढ़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो इंसान का दिल, अच्छे इंसान का दिल मोम हो जाता है, और वो माँ बाप की खुशी की खातिर जो है वो अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो खुसूसन याद रखना चाहिए आज के दौर के अंदर तो और भी ज्यादा कि माँ बाप भी इसके अंदर शामिल होते हैं। मसला, आयात मज़कूरा से साबित हुआ कि उमूर दीन में कुफार से मशवरा लेना भी जायज नहीं है, ठीक है ना, ये मशवरा भी नहीं ले सकते कुफार से अपने दीनी उमूर के अंदर। दूसरे उमूर जिनका ताल्लुक तजुर्बा वगैरह से हो, उनमें मशवरा लेने में मुजायका नहीं है, ठीक है, जैसे कि वो उमूर के जिनसे कि आपके दीन में हर्ज ना होता हो, जैसे कि असलाह साजी, ठीक है ना। अब असलाह साजी की टेक्नोलॉजी अगर किसी दूसरे मुल्क के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो अपने दीन को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर आप उस मामले में कुफार से मशवरा कर सकते हैं, कुफार की चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने हिंदी तलवार इस्तेमाल करी, ये नहीं किया कि जी सारी तलवारें अरब में बनेंगी, मुसलमान बनाएंगे तब मैं इस्तेमाल करूंगा दीनी गैरत तो हमियत की वजह से, ऐसा नहीं किया, बल्कि हिंद में बनी हुई तलवार इस्तेमाल करी, ठीक है, दूसरे मुल्कों की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है। तो जब तक दीन कॉम्प्रोमाइज नहीं होता उस वक्त तक जायज है, लेकिन जहां दीन का कॉम्प्रोमाइज आएगा कि जी समझौता कर लें, दीन में जो है वो कुछ चीजों को छोड़ दें और कुछ चीजों को जो है वो चेंज कर दें, तो इस सूरत में कुफार से मशवरा लेना भी जायज नहीं है। अगली ग्रुप ऑफ आयात शुरू करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफी, कि अल्लाह ताला ने नहीं रखे किसी मर्द के, रजुल का तर्जुमा मर्द से किया जाता है, लेकिन जाहिर है यहाँ पर अल्लाह ताला के तमाम यानी मखलूक मुराद है, मखलूक से मुराद इंसान और जिन सब मुराद है, कि अल्लाह ताला ने नहीं रखे किसी मर्द के दो दिल इसके सीने के अंदर, जौफ के अंदर या इसके अंदर। जौफ जो होता है वो दरमियानी जगह, वो गहरी जगह जो पेट होता है बेसिकली उसको कहते हैं। वमा जअला अज़वाजकुम अल्लाती तुज़ाहिरूना मिनहुन्ना उम्महातिकुम, और नहीं किया तुम्हारी जोरुओं को, जोरुओं से मुराद तुम्हारी बीवियों को, अजवाज को, जिनको लाई जो है, जैसे जैसे कि कल बताया था आपने भी कि ये इसम मौसूला है, तो उसका तर्जुमा जो है वो जिनको से करते हैं। तो अल्लाती अल्लवाती, ये तो इल्मुन नहफ के अंदर भी लिखा हुआ है ना, अल्लाती अल्लवाती, तो अल्लाई भी उसी में से एक होता है, वहां लिखा हुआ भी होता है कुछ नहफ किताबों के अंदर अल्लाई। तो जिनको माँ माँ कह बैठे हो तुम, तो ज़ाहिरूना मिनहुन्ना उम्महातिकुम के, यानी नहीं हो जाती हैं उनमें से कोई तुम्हारी माए, ठीक है। वमा जाला अदिया, और नहीं किया तुम्हारे ले पालकों को तुम्हारे बेटे अबनाकुम। अदियाकुम के बारे में तफसीर में गालबन है, तफसीर में उसकी हाँ है आगे तफसीर। तो अदियाकुम ले पालक, अबनाकुम तुम्हारे बेटे, यानी जिनको तुमने मुंह बोला बेटा बना लिया, ये तुम्हारे बेटे नहीं बन जाते हैं। कौलुकुम बे अफवाहिकुम, ये तुम्हारा कौल जो है ये तुम्हारे मुंह की बातें हैं, ठीक है, यानी इनसे हकीकत नहीं बन जाती, ये तुम्हारे मुंह की कहीं कहीं भी बातें हैं। जो तुम्हारा बेटा बना वो तो दूसरे अंदाज तरीके से बना, तुम्हारे मुंह मुंह के कहने से थोड़ी बेटा बन जाता है। वल्लाहु यकूलुल हक्का वहुवा यहदी सबील, और अल्लाह ताला हक फरमाता है और वो वही रास्ता सुझाता है। खुलासे तफसीर ही पढ़ लेते हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने किसी शख्स के सीने में दो दिल नहीं बनाए, एक ही दिल है। ऐसा नहीं है कि एक दिल जो है वो रहमान को दे दिया और दूसरा दिल शैतान को दे दिया, ठीक है। जैसे कि अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि क्या है, वॉट इज सीजर्स इज सीजर्स एंड वॉट इज पोप्स इज पोप्स, ठीक है। या कुछ लोग कहते हैं वॉट इज गॉड्स इज गॉड्स, ठीक है। वॉट इज सीजर इज सीजर, यानी जो सीजर का है वो सीजर का है और जो गॉड का है वो गॉड का है, ठीक है। तो अपनी जिंदगी को सीजर और गॉड के दरमियान डिवाइड कर लिया, यानी जब चर्च के अंदर गए तो बड़े परहेजगार और इबादत गुजार बन गए, और जब चर्च से बाहर आए तो बेहयाई के काम शुरू कर दिए, जैसे कि हम भी ये करते हैं, ठीक है। तो ये क्रिश्चियनिटी से हमने ये चीज जो है वो यानी ली है, ठीक है। तो ऐसे दो दिल अल्लाह ताला ने नहीं बनाए कि एक दिल जो है वो दुनिया को दे दिया और एक दिल जो है वो दुनिया के परवरदिगार को दे दिया। एक ही दिल है भाई, इसमें या तो दुनिया की मोहब्बत आएगी या इसके अंदर जो है वो अल्लाह की मोहब्बत आएगी, दोनों एक साथ नहीं आ सकती। ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ يَا سَبِيلِ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ। अच्छा अस्तगफिरुल्लाह, खुदा से तफसीर पढ़ते पढ़ते वापस उधर पहुंच गया। अल्लाह ताला ने किसी शख्स के सीने में दो दिल नहीं बनाए, और इसी तरह तुम्हारी उन बीवियों को जिनसे तुम जिहार कर लेते हो तुम्हारी माँ नहीं बनाया। जिहार का मसला भी आगे पढ़ेंगे, और बल्कि सूरह नूर के अंदर हम पढ़ भी चुके हैं ना। और इसी तरह समझ लो कि तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा सचमुच का बेटा भी नहीं बना दिया। ये सिर्फ तुम्हारे मुंह से कहने की बात है जो गलत है, वाकई के मुताबिक नहीं है, और अल्लाह ताला हक बात फरमाता है और वही सीधा रास्ता बताता है, यानी जो तुम्हारे लिए बेहतर रास्ता है बेहतरी है वो अल्लाह वही बताता है। और जब मुंह बोले बेटे वाकई में तुम्हारे बेटे नहीं, तो तुमको मुतबन्ना बनाने वालों तो तुम उनको मुतबन्ना बनाने वालों का बेटा मत कहो, बल्कि इनके हकीकी बापों की तरफ मंसूब किया करो, ये अल्लाह के नजदीक रास्ते की बात है। और अगर तुम उनके बापों को ना जानते हो तो उनको अपना भाई या अपना दोस्त कहकर पुकारो, क्योंकि आखिर वो तुम्हारे दीन के भाई हैं और तुम्हारे दोस्त हैं, और तुमको इसमें जो भूल चूक हो जाए तो इससे तुम पर कोई गुनाह नहीं होगा, यानी भूल चूक होने पर गुनाह नहीं होता, लेकिन हाँ जो दिल से इरादा करके कहो तो इससे गुनाह होगा, और इससे भी माफी मांग लो तो माफ हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला गफूर रहीम है। तो भूल चूक होने से तो बगैर इरादे के इंसान से कोई चीज हो गई, उसका इरादा नहीं था करने का तो वो गुनाहगार नहीं कहलाता, तो इरादे से अगर कर लिया तब वो गुनाह कहलाता है, लेकिन इरादे से भी करने के बाद अल्लाह ताला इतने गफूर रहीम है कि माफी मांग ले तो अल्लाह ताला फौरन माफ फरमा देते हैं। आरिफ मुसाइन में फरमाते हैं कि साबका आयात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार और मुनाफिकीन के मशवरों पर अमल ना करने और उनकी बात ना मानने की हिदायत है। आयात मज़कूरा में कुफार में चली हुई तीन रस्मों और बातिल ख्यालात की तरदीद है। तीन रस्मों की यहाँ पर तरदीद फरमाई। पहली बात यह है कि जाहिलियत के जमाने में अरब लोग ऐसे शख्स को जो ज्यादा जहीन हो ये कहा करते थे कि इसके सीने में दो दिल हैं। दूसरा यह कि इनमें अपनी अजवाज के मुताबिक एक ये रस्म थी कि जिस शख्स ने अपनी बीवी को अपनी माँ की पीठ या किसी उज्व से तशबीह दे दी और कह दिया कि तू मेरे लिए ऐसी है जैसे मेरी माँ की पीठ, उसको उनके मुहावरे में जिहार कहा जाता था, जो जहर से मुश्तक है और जहर के मानी है पीठ। ठीक है, जैसे जहूरहिम उनकी पीठें। और उनका ख्याल ये था कि जिस शख्स ने अपनी बीवी से जिहार कर लिया वो हमेशा के लिए उस पर हराम हो गई। गोया कि जिहार जो है वो उनके नजदीक यानी तलाक मुगल्लजा के बराबर थी। तीसरे ये कि इनमें एक रस्म ये थी कि एक आदमी किसी दूसरे के बेटे को अपना मुतबन्ना यानी मुंह बोला बेटा बना लिया करता था। असल क्या बनेगी, तबन्ना या तबन्ना, तकबला या तकबलु बाप से, इसे मफूल का सीगा, तबन्ना या तबन्ना। तो जो इस तरह बेटा बनाता ये लड़का इसी का बेटा मशहूर हो जाता और इसी का बेटा कहकर पुकारा जाता था। और उनके नजदीक ये मुंह बोला बेटा तमाम अहकाम में असली बेटे की तरह माना जाता था। मसलन मीरास में भी उसकी औलाद के साथ मिसले हकीकी औलाद के शरीक होता था। और नसबी रिश्ते से जिन औरतों के साथ निकाह हराम होता है ये मुंह बोले बेटे के रिश्ते को भी ऐसा ही करार देते थे। मसलन जैसे अपने हकीकी बेटे की बीवी से उसके तलाक देने के बाद भी निकाह हराम रहता है, ये मुंह बोले बेटे की बीवी को भी बात तलाक इस शख्स के लिए हराम समझते थे। ठीक है, तो कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ज़माने जाहिलियत के ये तीन बातिल ख्यालात और रसूम थे जिनमें से पहली बात अगरचे मजहबी अकीदे या अमल से मुताल्लिक नहीं थी, इसलिए शरीयत इस्लाम को इसकी तरदीद की जरूरत नहीं थी। ये महज एक फन तशरीह हो तिब का मामला था कि इंसान के सीने में एक ही दिल होता है या दो भी होते हैं। ठीक है, इसका जाहिर उल बुतलान होना भी सभी को मालूम था, इसलिए शायद इसके बुतलान के जिक्र को भी बाकी दो मसलों की ताइद व तमहीद के तौर पर बयान कर दिया गया। कि जिस तरह अहले जाहिलियत का ये कहना बातिल है कि किसी एक इंसान के सीने में दो दिल हो सकते हैं और इसके बुतलान को आम और खास सभी जानते हैं, इसी तरह जिहार और मुतबन्ना के मसाइल में भी इनके ख्यालात बातिल हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक तफसीर इसकी यही है कि भाई ये जो दो दिलों वाला मामला है तो ये इतनी गलत बात है कि सभी इसकी गलती को मानते हैं। बस ऐसी तफरी तबाह के तौर पर और फन तशरी और तिब के गोया कि नुकात बयान करने वगैरह के तौर पर ना लोग इस तरह की बातें कर दिया करते हैं, लेकिन उनको पता है कि यह हकीकत नहीं है, एक दिल ही होता है, दो दिल नहीं होते। ठीक है, तो जिस तरह ये गैर हकीकी बात है उसी तरीके से बाकी दो बातें भी गैर हकीकी हैं। ठीक है, तो ये तो एक तफसीर हो गई, लेकिन सूफिया कराम के नजदीक जो तफसीर इसकी मशहूर है वो यही है कि दो यानी एक बंदे के दो दिल का से मुराद ये भी ली जा सकती है या ये इशारा लिया जा सकता है कि रूहानी तौर पर ऐसा नहीं होता कि एक दिल जो है वो रहमान की के लिए वक्फ कर दिया जाए और एक दिल शैतान के लिए वक्फ कर दिया जाए। बाकी फरमाया कि बाकी दो मसले, एक जिहाद दूसरे मुतबन्ना बेटे के अहकाम, ये उन मुआशरती और आयली मसाइल में से हैं जिनकी इस्लाम में खास अहमियत है, यहां तक कि इनकी जुजियात और तफसीलात भी ताला ने कुरान में खुद ही बयान फरमाई है। ठीक है, बहुत कम ऐसे मसाइल हैं कि जिनकी तफसीलात और जुजियात जो है वो कुरान ने बयान फरमाई, ज्यादातर को छोड़ दिया गया, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर छोड़ दिया गया। लेकिन जैसे मीरास के अहकाम है उसी तरीके से इनके अहकाम भी जिहार वगैरह के कुरान ने खुद बयान फरमाए। दूसरे मामला की तरह सिर्फ उसूल बयान करके तफसीली बयान को पैगम्बर के हवाले नहीं फरमाया। इन दोनों मसलों में अहले जाहिलियत ने अपनी बेबुनियाद ख्वाहिशात से हलाल और हराम और जायज़ और नाजायज के खुद साख्ता कवानीन बना रखे थे। दीन हक का फर्ज था कि वो इन बातिल रसूम ख्यालात का इब्ताल करके हक बात वाज़ह करे। इसलिए बयान फरमाया वमा जाला अज़वाजकुमुन्नाई, दूसरे मसलों में सिर्फ उसूल बयान करके तफसीली बयान को पैगंबर के हवाले, दूसरे मामलात की तरह पैगंबर के हवाले नहीं फरमाया। तो इन दोनों मसलों में अहले जाहिलियत ने अपनी बेबुनियाद ख्वाहिशात से हलाल हराम और जायज और नाजायज के खुद साख्ता कवानीन बना रखे थे। दीन हक का फर्ज था कि वो इन बातिल रसूम व ख्यालात का इब्ताल करके हक बात वाज़ह करे। इसलिए बयान फरमाया, वमा जअला अज़वाजकुमुल्लाई तुवाहिरून मिन्हुन्ना उम्महातिकुम। यानी तुम्हारा ये ख्याल गलत है कि अगर किसी ने बीवी को माँ की बराबर या माँ के बराबर या मिसल कह दिया तो वो हकीकी माँ की तरह हमेशा के लिए उस पर हराम हो गई। तुम्हारे कहने से बीवी हकीकतन माँ नहीं हो जाती, तुम्हारी माँ तो वही है जिससे तुम पैदा हुए हो। इस आयत ने अहले जाहिलियत के इस ख्याल को तो बातिल कर दिया कि जिहार करने से हुर्मत मुअब्बदा नहीं होती, अबदी हुर्मत नहीं होती। अच्छा, एक और भी बात यहाँ पे जहन में आई, वो ये कि ये जिस तरह से किसी औरत को माँ कह देने से वो माँ बन नहीं जाती है ना, तो माँ तो सिर्फ वही है जिससे कि तुम पैदा हुए हो। तो इसी तरीके से ये जो फॉस्टर मदर्स होती है ना, फॉस्टर मदर्स यानी जो लोग बच्चों को जो है वो गोद ले लेते हैं, ठीक है, गोद ले लेते हैं, तो अब वो किस नियत से भी लें कि उनकी औलाद नहीं थी इस वजह से उन्होंने गोद ले लिया, या कोई बच्चा उनको उसके ऊपर उनको तरस आ गया, रहम आ गया और उसकी कफालत की खातिर उन्होंने गोद ले लिया, ठीक है। अब ये बच्चा जो है गोद ले लेने से इनका हकीकी बेटा नहीं बन जाता, माँ जो है वो उसके लिए वैसे ही गैर महरम रहती है उस लड़के के लिए जैसे कि किसी और इंसान के लिए गैर महरम रहती है। अब ये बच्चा जब इनके पास रहेगा तो जब तक तो वो बच्चा है तब तक तो ठीक है, पर्दे के अहकामात नहीं आए, लेकिन जब वो जवान हो गया, बालिग हो गया, ठीक है, तो उसके बाद से ये माँ उसके लिए ऐसे ही गैर महरम है जैसे कि दूसरे किसी के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या जो है वो पर्दे के अहकामात को लोग भूल जाते हैं, यही कि भाई वो उसको अपना हकीकी बेटा मानना शुरू कर देते हैं, या बेटी को अगर इसी तरीके से ले लिया तो अब वो बेटी जो है वो बाप के लिए जो कि फॉस्टर फादर है, तो फॉस्टर फादर के लिए वो लड़की जो है वो महरम नहीं बन गई, ठीक है। महरम अगर आपको बनाना है ना तो उसके लिए फिर वो जो जिसको कहते हैं यानी मदर फीड वाला मामला वो अगर किया तो फिर वो शरीयत के अहकाम के तहत जो है वो महरम बनेगा, लड़का या लड़की महरम बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेंगे, ठीक है। तो फरमाए कि ये बात के ऐसा कहने से कोई शरी असर मुरतब होता है या नहीं, इसका हुक्म मुस्तकिलन सूरह मुजादला में बतलाया गया है कि ऐसा कहना गुनाह है, इससे परहेज वाजिब है, और ऐसा कहने वाला अगर कफारे जिहार अदा कर दे तो बीवी उसके लिए हलाल हो जाती है। यानी अल्लाह ताला ने सजा रखी है इस गुनाह की इसी दुनिया के अंदर, ठीक है, कि अगर आपने ये वाला गुनाह किया ना कि बीवी को ऐसी बात कह दी तो फिर अब बीवी जो है ना वो आपके लिए हमेशा के लिए तो हराम नहीं हुई लेकिन वक्ती तौर पर हराम हो गई जब तक आप कफारे जहर अदा ना करें। कफारे जहर की तफसील सूरह मुजादला में आएगी। दूसरा मसला मुतबन्ना बेटे का था, इसके मुताबिक फरमाया, वमा जाला अदियाकुम अबनाअकुम। अदिया दुयुन की जमी है और दईयुन वो लड़का है जिसको मुंह वाला बेटा कहा जाता है। मतलब ये है कि जिस तरह एक इंसान के पहलू में दो दिल नहीं होते और जिस तरह बीवी को माँ के मिसल कहने से बीवी माँ नहीं बन जाती, इसी तरह मुंह वाला बेटा तुम्हारा बेटा नहीं बन जाता। यानी अल्लाह ताला ने तमहीद बांध करके ना ये वाला मसला बयान किया जिसका कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के वाकये के साथ ताल्लुक था। यानी दूसरे बेटों के साथ ना वो मीरास में शरीक होगा और ना हुर्मत निकाह के मसाइल इस पर आयद होंगे कि बेटे बेटे की मुतल्लका बीवी बाप पर हमेशा के लिए हराम है तो मुतबन्ना की बीवी भी हराम हो जाएगी। तो हजरत जैद रज़ी अल्लाह तआला और ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाकया आपको मालूम ही होगा जो कि आगे सूरह अहज़ाब के अंदर बाकायदा बयान भी होता है। और चूंकि इस आखिरी मामले का असर बहुत से मामला पर पड़ता है इसलिए ये हुक्म नाफिज कर दिया गया कि मुतबन्ना बेटे को जब पुकारो या उसका जिक्र करो तो इसके असली बाप की तरफ मनसूब करके जिक्र करो, जिसने बेटा बना लिया है उसका बेटा कहकर खिताब ना करो क्योंकि इससे बहुत से मामलात में इश्तबाह और इल्तिबास पैदा हो जाने का खतरा है। सही बुखारी मुस्लिम वगैरह में हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि इस आयत के नाजिल होने से पहले हम जैद बिन हारिसा को जैद बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुतबन्ना बना लिया था। इस आयत के नुज़ूल के बाद हमने ये आदत छोड़ दी, तो आदतें तर्क कर दिया करते थे अल्लाह के हुक्म के आने के बाद। मसला इससे मालूम हुआ कि अक्सर आदमी जो दूसरों के बच्चों को बेटा कहकर पुकारते हैं, जबकि महज शफ़क़त की वजह से हो, मुतबन्ना करार देने की वजह से ना हो, तो ये अगरचे जायज है मगर फिर भी बेहतर नहीं कि सूरतन मुमानियत में दाखिल है। ठीक है, जैसे कि हम कह देते हैं ना, भी बेटा ये काम कर देना, बेटा ये काम कर देना, बेटा तुम कितने अच्छे हो। ठीक है, तो अब नियत तो नहीं होती मुतबन्ना बनाने की, लेकिन हजरत ने लिखा कि ये भी सूरत बेहतर नहीं है, ये सूरतन तो मुमानियत है ना इसकी कि बेटा ना कहो। यही वो मामला है जिसने कुरैश अरब को मुगालते में डालकर एक बहुत बड़े गुनाह अजीम का मुर्तकिब बना दिया था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इल्जाम लगाने लगे कि आपने अपने बेटे की मुतल्लका बीवी से निकाह कर लिया, हालांकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे न थे बल्कि मुतबन्ना थे, जिसका जिक्र इसी सूरत में आगे आने वाला है। ठीक है, कोई सवाल? इसमें कल हमने ये जो एक पॉइंट पढ़ा था ना, पॉइंट पेज नंबर 80 के ऊपर, के जिसमें फरमाया था कि कुफार और मुनाफिकीन से अल्लाह ताला ने मशवरे करने से मना कर दिया नबी रसूल को। ठीक है, तो उसमें लिखा था इन्होंने कि और इसको अतात के लफ्ज़ से इसलिए ताबीर कर दिया कि ऐसे मशवरे और बाहिमी रवाबित आदतन मानने का सबब बन जाया करते हैं। ठीक है, तो फरमाया कि यहाँ दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असबाबे अताअत से मना किया गया है, नफ्से अताअत का तो आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एहतमाल ही नहीं था। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ी बात कल भी हुई थी, असबाबे अताअत। ठीक है, तो असबाब अतात यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में है? असबाब गुनाह। ठीक है, यानी गुनाह जो है वो तो उनकी बात मानना है, लेकिन जो चीज इस बात मानने की तरफ ले जाए उससे भी मना कर दिया। तो कल आपको क्या बात बताई थी, जरा उसूल बताइए जो कल आप लोगों को बताया था, उसूल की बात जो कल आपको बताई थी इस गुनाह और असबाब गुनाह के मुताबिक एक फैक्ट आपके सामने रखा था जो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने आगे बयान भी किया है। क्या है वो फैक्ट जरा बताएं। गुनाह और असबाब गुनाह, इसके बारे में एक बहुत ही फैक्चुअल बात कल बात बयान हुई थी। क्या थी वो बात? जी, उम्मतों से मुतालिक बात थी, हिंट भी दे दिया आपको। जी सो रहे थे सारे कल, या आज सो रहे हैं? पिछली उम्मतों में असबाब गुनाह से मना नहीं किया था। ठीक है, और इसका दूसरा जुज क्या है इस उसूल का? उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबाब गुनाह भी मना है, ना तकरबुल जिना, इसकी मिसाल दी थी कि मिसाल। जी ठीक है, तो ये जो असबाब गुनाह है ना, ये मना है, लेकिन गुनाह का तो फिर भी पता लग जाता है कि गुनाह को क्या है, ठीक है ना, फिर भी थोड़ा बहुत दीन इंसान पढ़ लेता है, सुन लेता है, देख लेता है, तो उसको पता चल जाता है कि जी गुनाह क्या है। ठीक है ना, तो गुनाहों को आइडेंटिफाई करना इतना बड़ा मसला नहीं होता, ठीक है, आसानी से आइडेंटिफाई हो सकते हैं, लेकिन असबाबे गुनाह को आइडेंटिफाई करना, असबाबे गुनाह को पकड़ना, ये आसान काम नहीं होता। ठीक है ना, इसके लिए बसीरत की जरूरत पड़ती है, इसके लिए फॉरवर्ड लुकिंग, बल्कि फॉरवर्ड लुकिंग में नहीं, फ्यूचर लुकिंग, ठीक है ना, इसके लिए तजुर्बे की जरूरत पड़ती है, इसके लिए हिकमत की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कि भाई दिस थिंग कैन लीड टू गुना। ठीक है, आप आम आदमी को, अवाम उन्नास को देख करके नहीं पता लगता कि ये जो मैं हरकत कर रहा हूं बड़ी अच्छी नीयत से कर रहा हूं, ठीक है ना, बड़े खैर के लिए कर रहा हूं, लेकिन ये चीज बाद में जाके गुनाह बनेगी। ठीक है ना, ये किसको पता लगता है, ये गहरा इल्म रखने वाले और समझ रखने वाले, बसीरत रखने वाले उलमा को ये बात पता लगती है। मिसाल के तौर पर 12 रबीउल अव्वल के अंदर जो आज के हालात चल रहे हैं, ठीक है ना, ये जो शोर हंगामा और लहवो लाभ और क्या क्या खराफात हैं इसके अंदर, तो ये सब शुरू को थोड़ी हुआ था ऐसे, शुरू जो है वो तो बड़ी नेक नियति के साथ हुआ था ना, कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर हम जो है वो मिल बैठेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात किया करेंगे, तो बहुत नेक नियति के साथ ये बात स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जैसे कि क्रिसमस, क्रिसमस भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लेकिन क्रिसमस में जो कुछ हुआ तकरीबन वही सब कुछ अब ईद मिलाद उन्नबी में भी हो रहा है। ठीक है ना, तो ये असबाब गुनाह शुरू होते थे, अवाम को नहीं पता चला कि ये कब गुनाह बन जाएंगे, कब गुनाह बन गए, ठीक है ना, लेकिन उलमा को ये बात पता है, क्योंकि उन्होंने स्टडी किया होता है, उन्होंने ईसाइयों की तारीफ पढ़ी हुई थी, उनको पता था ईसाइयत के अंदर ऐसी मामला शुरू हुआ और बाद में जाकर के वो क्रिसमस बन गया। ठीक है, तो ये जो असबाब गुनाह है ना, ये आसानी से आइडेंटिफाई नहीं होते, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, इनको पिक कर लेने के लिए कि ये असबाब गुनाह है, बहुत बसीरत की जरूरत पड़ती है, तजुर्बे की, मुशाहदे की और इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, अगर आपको ये बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि ऐसा होता है जो मैं कह रहा हूँ या ऐसा नहीं होता, असबाब गुनाह पिक करना हर एक के बस में नहीं होता। ठीक है, तो अब जो है ना, एक बात जरा गौर से सुन लें कि ये जो वालिदैन का मसला होता है ना, कि वालिदैन जो है वो गुनाह की तरफ बुलाते हैं, ठीक है, या गुनाह की तरफ जो है वो पुश करते हैं, तो ये जो बहुत दुनियादार और बदकार या काफिर फासिक फाजर वालिदैन होते हैं ना, तो वो जो है ना वो तो करते हैं पुश स्ट्रेट गुनाह की तरफ, ठीक है ना, सरीह गुनाह की तरफ पुश करते हैं, ठीक है ना, जो काफिर वालदैन होते हैं, फासिक होते हैं, फाजिर होते हैं, ठीक है, लेकिन जब थोड़ा सा दीनदार हो जाते हैं ना, तो उनको भी ये बात समझ में आ जाती है कि अब गुनाह की तरफ पुश नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, अब जो है वो औलाद को गुनाह की तरफ पुश करना नहीं चाहिए, वो मान भी जाते हैं, कुछ जो है वो जरा ज्यादा अच्छे हो जाते हैं तो वो मान भी जाते हैं इस बात को कि गुनाह की तरफ पुश नहीं कर सकते हम औलाद को। ठीक है ना, तो अब जो है ना वो अपनी कम इल्मी की वजह से, कम समझी की वजह से, या अपने जो भी दुनियावी उनकी प्रायोरिटीज होती हैं उनकी वजह से वो अपनी औलादों को असबाबे गुनाह की तरफ पुश करते हैं, गुनाह की तरफ पुश नहीं करते, असबाबे गुनाह की तरफ पुश करते हैं, असबाबे गुनाह की तरफ माइल करते हैं। ठीक है ना, उनसे असबाबे गुनाह का तकाजा करते हैं, गुनाह का तकाजा नहीं करते। और औलाद चूंकि आम लोगों में से होती है, उसको बसीरत नहीं होती, उसको तजुर्बा नहीं होता, उसके पास जो है वो इल्म नहीं होता, तो वो ये बात नहीं समझ पाती कि मेरी माँ, मेरी बाप जो है, जो मुझे इस चीज की तरफ बुला रहे हैं ना, ये भी गुनाह है, ये भी मना है, क्योंकि ये असबाब गुनाह में से है। वो बच्चा आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये काम जो है ये गुनाह तो नहीं है, लेकिन ये असबाब गुनाह में से है, और ये असबाब गुनाह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के अंदर मना है। ठीक है, इस वजह से ना ये जो मशवरा है ना, उलमा मशाइख से मशवरा करना वालिदैन के मामले के अंदर, इसकी इंतहाई अहमियत है, क्योंकि ये सिर्फ उलमा मशाइख ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जी वालिद साहब या जो बेटे को काम करने के लिए कह रहे हैं, अगरचे ये गुनाह नहीं है, लेकिन ये असबाब गुनाह में से है। मिसाल के तौर पर बच्चों को प्रोमोट करते हैं कि तुम जो है वो कनाडा की सिटीजनशिप ले लो, तुम अमेरिका की सिटीजनशिप ले लो, आजकल तो और भी बढ़ गया, पहले पाकिस्तान के हालात खराब थे तो पाकिस्तान से कहते थे चलो मिडल ईस्ट चले जाओ, जो दीनदार मुसलमान होते थे वो कहते थे चलो जी अमेरिका, यूरोप ना जाओ, वहां पे बहुत बुरा हाल है, तुम सऊदी अरब चले जाओ, तो सऊदी अरब तो जाहिर है बेहतरीन जगह है पाकिस्तान के मुकाबले में, इंडिया के मुकाबले में, ठीक है ना। तो सऊदी अरब चले जाओ, माल भी आएगा, राइट, माल भी आएगा और साथ साथ जो है वो दीन भी तुम्हारा महफूज रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो उनकी अच्छी नीयत होती थी और इसको तो हमारे मशाइख भी पसंद करते हैं, सऊदी अरब आना मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा की वजह से। कितने ऐसे वालदैन हैं जो कि वाकई ये नीयत करके सऊदी अरब अपने औलादों को भेजते हैं या दुआई करते हैं अल्लाह ताला से, ठीक है। लेकिन अगर खालिसतन माल की नीयत होती है तो फिर क्या होता है, सऊदी अरब में भी तो एक दिन वक्त खराब होने वाला है ना, बल्कि हो चुका है, ठीक है ना। सऊदी अरब की भी तो इकोनॉमी बहुत खराब हो चुकी है, तो अब क्या मसला हो गया है। अब जो है ना इस किस्म के वालदैन जिन्होंने माल की वजह से सऊदी अरब भेजा था, या सऊदी अरब की जो है वो असल में उनको माल से इंटरेस्ट इंटरेस्ट था, उनको हरमैन से इंटरेस्ट नहीं था या सेकेंडरी इंटरेस्ट था। अब वो क्या कह रहे हैं, बेटा चलो चलो सऊदी अरब के हालात तो बड़े खराब हो गए, अब तुम चलो कैनेडा की सिटीजनशिप ले लो, है, अब तुम ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ले लो, या अगर तुम्हें मौका मिलता है तो तुम अमेरिका में जॉब अप्लाई कर दो, ठीक है ना। अब ये अमेरिका में जॉब अप्लाई करना, ये कोई किसी फिका की किताब के अंदर हराम तो नहीं लिखा हुआ ना, गुनाह तो नहीं लिखा हुआ ना, कनाडा की सिटीजनशिप लेना ना और ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप लेना, ये कोई गुनाह तो नहीं लिखा हुआ कहीं भी, ठीक है। या अगर लिखा हुआ भी है तो हमें तो पता नहीं है कि कहाँ लिखा हुआ है। वैसे तो मुफ्ती तकी उस्मानी तादकातों की जो दरसे तिरमिजी है उसमें तिरमिजी शरीफ के जो लेक्चर्स हैं ना, दौरे हदीस के लेक्चर्स, उन्होंने ये चीज नकल करी है कि दारुल कुफर में जाकर के रहना ये फुकहा ने हराम करार दिया है, ठीक है, ये हराम करार दिया दारुल कुफर में जाकर के रहना। लेकिन ये किसको बताया कि जी उन्होंने दौरे हदीस की क्लास के अंदर ये बात कही थी, ठीक है। तो अब बच्चे जो है वो माँ बाप की खुशी की खातिर जो है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और यूरोप की सुधारना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि अगर ये जाहिरी तौर पर गुनाह नहीं भी है ना, तो ये असबाबी गुनाह में से तो है ना, क्योंकि वहां जाकर के या तो आपका ईमान ही सलामत नहीं रहेगा, या अगर आपका ईमान बच भी गया तो आगे आने वाली नस्लों का ईमान तो नहीं रह सकता ना ऐसी जगहों के ऊपर। जैसे कि मुशाहिदे से साफ जाहिर है, साफ बात क्लियर है कि आने वाली नस्लों में से अक्सरियत जो है वो बिल्कुल ही काफिर हो जाती है। एक आध बच जाते हैं तो उसकी एक आध के ऊपर कयास करके लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि देखो ये भी तो बच गया ना तो तुम भी बच जाओगे। है? भाई हजार में से एक बच गया तो आप हजार में से एक पर कयास करते हैं कभी कोई चीज? है, अगर हजार में से एक, हजार कैंडीज पड़ी हुई हो उसमें से एक जो है वो जहर वाली कैंडी हो, तो आप 999 कैंडीज को छोड़ देते हैं उस एक की वजह से, ठीक है ना। तो एक पे कयास करके क्या आप 999 के ऊपर एतमाद कर लेते हैं? हरगिज नहीं करते। लेकिन ईमान का मामला ऐसा है कि हजार में से एक जो है वो अगर अच्छा मुसलमान निकल आया तो हम उसके ऊपर कयास करके जो है ना कहते हैं तुम भी बचोगे, तुम्हारी औलादें भी बचेंगी। तो ऐसे माँ बाप जो है ना फिर वो इस तरीके से बच्चों को आगे भेजते हैं। और आज तो अल्लाह ताला ने एक अजीब ही बात इस आजिश को दिखला दी, अजीब ही बात दिखलाई, मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह के लिए इतनी दिल में मोहब्बत पैदा होती है, इतनी मोहब्बत पैदा होती है। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें अपनी मारफुल कुरान के अंदर लिखी हैं जो कि हमारे इस दौर के मसाइल से कितना यानी रेलिवेंट है, इन मसाइल के ऊपर जिन मसलों में हम उलझे हुए। आप लोगों इंशाल्लाह ये आजिश भेजेगा, तस्वीर लेके रखी हुई है वॉल्यूम 8 के अंदर ही, वो मौजूद है सूरह मुद्दस्सिर की तफसीर के अंदर, ठीक है। अजीब उन्होंने बात लिखी है वालदैन के बारे में, उसमें इस दौर के वालदैन, ठीक है, खुसूसन माशाल्लाह अर्जुमन साहब हैदराबाद दक्कन में तो मशहूर है ना कि एवरी अदर हाउस वहां से बच्चा जो है वो बाहर गया हुआ है, ठीक है। तो बाहर वालों के लिए बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने लिखी है और हम आंखों से देख रहे हैं इन हालात को, ठीक है, कि माँ बाप जो है वो हैदराबाद दक्कन में बैठे होते हैं या कराची के किसी घर में बैठे होते हैं और सारी औलादें जो है वो कोई अमेरिका में है, कोई यूरोप में है, कोई किसी जगह है, कोई सऊदी अरब में है, कोई दुबई में है, और अजीब हालात है, ठीक है। तो इन सब बातों को ना जरा समझना पड़ता है, वरना लोग जो है वो बड़ी आसानी से पसीज जाते हैं कि हाँ जी माँ बाप जो है ना वो तो हमारी खैर ही चाह सकते हैं, उनको वो तो हमारी बुराई चाह ही नहीं सकते। भाई वाकई नहीं चाह सकते, लेकिन मसला सारा का सारा ये है कि उनको पता ही नहीं होता कि खैर किस चीज के अंदर है और बुराई किस चीज के अंदर है, ठीक है ना। ये मसला है सारा का सारा, वरना हम नहीं कह रहे कि आपके वालदैन जो है वो आपके शर चाहते हैं, ये हम नहीं कह रहे, ठीक है ना। लेकिन वो अपने कम इल्मी की वजह से और दीन का शऊर कम होने की वजह से और ईमान की अहमियत की कमी की वजह से वो नहीं समझ पाते कि किस चीज के अंदर खैर है और किस चीज के अंदर शर है। ये मसला सारा का सारा खड़ा हो जाता है ईमान वाले वालदैन के साथ। बाकी काफिर वालदैन तो वैसे भी उनको नहीं पता होता कि जी क्या चीज खैर है, क्या चीज शर है, ठीक है। तो आगे चलें कि ये तो खैर मुकम्मल होगी ना बात। अब जो आगे की आयात हैं इनके भी तर्जुमा तो हो चुका है ना, तो हम अभी थोड़ा सा जो टाइम है 5-10 मिनट है, तो इसमें हम ये शुरू कर देते हैं ताकि फिर इत्मीनान के साथ, उम्मीद है कि कल साजिश को जरा मौका मिल जाएगा अब उसूल फिका का मुताला करने का, तो वो कल फिर उसूल फिका ही पढ़ लेंगे। अभी जरा वाले साहब की काफी तबीयत खराब चल रही है, तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। ना है ठीक है, तो वो जो है यानी अच्छे काम की तरफ चलता है तो नफा है ठीक है, और बुरे काम की तरफ चलने लगे तो खुद अपना नफ्स ही अपने लिए मुसीबत बन जाता है। अलबत्ता यहाँ पर जो लाइन है ना, इस लाइन के अंदर जो हजरत ने लिखा है, तो हजरत जो है वो बहुत बड़े शेख बुजुर्ग सब कुछ थे, लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें दूसरी तरफ से भी लेनी पड़ती है ना, क्योंकि हर बंदा हर चीज का तो 100% एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो ये जो नफ्स का मामला है, इसके बारे में अगर सूफिया से इंफॉर्मेशन ली जाए ना, नॉलेज ली जाए, तो वो ज्यादा वो होती है। हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह अगरचे के सिलसिला तसव्वुफ के अंदर बैद भी थे ठीक है ना, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद भी थे, बल्कि फिर उनको इजाजत खिलाफत भी मिली, लेकिन इनका जो असल फोकस था वो फिका था और कुरान की तफसीर, ये इनके ना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स थे। तसव्वुफ जो है वो इन्होंने तसव्वुफ के अंदर वैसे अमल नहीं किया जैसे कि तसव्वुफ के मशायख करते हैं, ये बतौर तसव्वुफ के शेख के मशहूर थे ही नहीं। तो जब तसव्वुफ के मशायख की तरफ जाते हैं ना, तो उनसे ये पता लगता है कि नफ्स जो है ना, ये नफ्स जो है ये अच्छे कामों की तरफ नहीं चलता है ठीक है ना, ये अच्छे कामों की तरफ नहीं चलता ओके, ये अच्छे कामों की तरफ नहीं उभारता बंदे को या इन्फ्लुएंस नहीं करता ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा ये क्या करता है कि जब ये इसका तस्किया हो जाए तो ये मुखालिफत छोड़ देता है ठीक है, मुखालिफत छोड़ देता है, नेकी की मुखालिफत छोड़ देता है, लेकिन ये नेकी की तरफ उभारता नहीं है ठीक है ना, ये दुश्मनी ही है और ये दुश्मन ही रहता है ठीक है। तो इस वाले जुमले को थोड़ा सा अगर आप अपने जहन में मॉडिफाई करके पढ़ें कि नफ्स अगर अच्छा है तो वो अच्छे कामों की तरफ चलता नहीं है बल्कि अच्छे कामों की मुखालिफत छोड़ देता है ठीक है, तो ये फिर नफे की बात हो जाती है। और बुरे कामों की तरफ चलने लगे, जैसे कि नफ्से अम्मारा जो है बुरे कामों की तरफ ही खाली चलता है, तो वो खुद अपना नफ्स ही अपने लिए मुसीबत बन जाता है, बखिलाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नफा ही नफा और खैर ही खैर है ठीक है ना। उस तालीम के अंदर जो है वो बुराई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊजुबिल्लाह कभी किसी मामले में बुरी बात कह दें, अलबत्ता उसको समझने के लिए हमें उलमा का सहारा लेना पड़ता है, वरना जो है नबी अलैहिस्सलाम ने तो बिल्कुल अच्छी बात कही थी, 100% नफे वाली बात कही थी, लेकिन शैतान ने हमारी नफ्स परस्ती की वजह से उस नफे वाली बात को किसी इस तरीके से घुमा करके हमारे सामने पेश किया कि हम उसको समझ नहीं पाए और हमने अपना नुकसान कर लिया ठीक है। तो ये और बात है, ये हमारी कमी है, ये नबी अलैहिस्सलाम की बात में कोई खराबी नहीं है। उसी तरीके से अपना नफ्स अगर अच्छा भी हो और नेकी ही की तरफ चलता हो, फिर भी उसका नफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफा के बराबर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अपने नफ्स को तो खैर और शर और मसलहत और मुजरत में मुगालता भी हो सकता है ठीक है। तो यहाँ पर नफ्स से क्या मुराद हुई, यहाँ पर नफ्स से क्या मुराद हुई, ये जो लफ्ज नफ्स है अब खुल करके सामने आ गई ना बात, की हजरत असल में उस नफ्स की बात ही नहीं कर रहे जो कि हम तसव्वुफ के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, इसका असल में मैंने पहले मुताला नहीं किया था, इस वजह से अभी जो पढ़ा है तो फिर बात जहन में आई है ठीक है। तो जरा बताएं इस जुमले का क्या मतलब है, क्योंकि अपने नफ्स को तो खैर और शर और मसलहत और मुजरत में मुगालता भी हो सकता है, तो यहाँ पर हजरत की नफ्स से क्या मुराद है, नफ्स से इनकी मुराद क्या है, यानी नफ्स बामानी जी जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने माशाल्लाह, अकल ठीक है, नफ्स से मुराद यहाँ पर अकल है असल में ठीक है, कि अपनी अकल को तो खैर और शर और मसलहत और मुजरत में मुगालता भी हो सकता है, और उसको मसाले व मुजार यानी जो हमारे सुलह की चीजें और जो हमारे जर की चीजें, इनका पूरा इल्म भी नहीं होता, क्योंकि बिकॉज हमारे अकल तो उतनी ही बात जानती है ना जितना उसका एक्सपोजर होता है, जितना उसका इल्म होता है, उससे ज्यादा तो वो नहीं जानती ना। और जब नफर आसानी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान और हमारी नफ्स से भी ज्यादा है, तो उनका हक हम पर हमारी जान से भी ज्यादा है। और वो हक यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर काम में अताअत करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तआज़ीम और तकरीम तमाम मखलूकात से ज्यादा करें। यही तो सारा मसला है जिसकी वजह से कि उलमा जो है वो रो रो करके आ गए मैदान के अंदर कि हम अपनी जान दे देंगे हुरमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। उलमाए हक ऐसे ऐसे बूढ़े, हजरत रफी उस्मानी दामत बरकातुम 80 साल से ज्यादा उनकी उम्र है और साहिब फराश हैं, यानी उठ नहीं सकते, लेकिन वो आकर के बयान दे रहे हैं कि जी हम जान दे देंगे, हम मर जाएंगे इस मसले के ऊपर। क्योंकि ऐसे ही है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक इतना ज्यादा है हमारे ऊपर। सबसे सेंसिटिव मसला है ये, सबसे सेंसिटिव मसला है एक कामिल मोमिन के लिए हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इन कमबख्तों ने इसी मसले को छेड़ा है। कितना अल्लाह ताला यानी इनके लिए दिल में नफरत शदीदा पैदा होती है, नफरत शदीदा। काफिर तो काफिर है, इन मुनाफिकों के लिए नफरत शदीदा पैदा होती है जिन्होंने इस मसले को छेड़ा करके। इतने कमबख्त किस्म के लोग हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे या इनको गारत करे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उन मोमिनीन की माएं हैं, यानी मज़कूरा तकरीर से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन के लिए रूहानी बाप हैं जो उनकी अपनी जात से भी ज्यादा उन पर शफीक और मेहरबान है। इसी मुनासबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात उम्मत की माएँ हो गईं, यानी तज़ीम व तकरीम में उनका हक माओं की तरह है। और इसमें इसमें हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा खाली नहीं आती, बल्कि इसमें हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी आती हैं और अम्मा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी आती हैं। और कैसे वो कमबख्त हैं, कैसे बदबख्त हैं वो लोग जो कि खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तो एहतराम करते हैं लेकिन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जान के दुश्मन हैं और उनके बारे में मुग़ल्लज़ात बकते हैं, वो भी कितने कमीने लोग हैं। इस आयत ने अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सराहतन उम्मत की माएँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारतन उम्मत की रूहानी बाप करार दिया। तो इससे भी इसी तरह का एक इल्तिबास और इश्तबा हो सकता था जिस तरह का इश्तबा मुतमन्ना को इसके गैर हकीकी बाप की तरफ मंसूब करने में होता था कि भाई ये उम्मत के बाप हैं और उनकी माँ जो है वो उम्मत की माएँ हैं, तो अब कोई गलत फहमी का शिकार हो सकता था कि जी ये तो वही मामला हो गया ले पालक वाला मामला कि जी अब जो है वो महरम बन गए, ठीक है, बाप जो है वो बेटियों के महरम बन गए और माएं जो है वो बेटों की महरम बन गई, ठीक है। तो ये मुगालता हो सकता था जिससे ये नतीजा निकाला जा सकता था कि उम्मत के मुसलमान सब आपस में हकीकी भाई बहन बन जाएं, ठीक है ना। माशाल्लाह क्या बात होती फिर भाई, हकीकी भाई बहन हो जाते, पर्दा ही सारा का सारा खत्म हो जाता, ठीक है ना। तो उनके आपस में निकाह का ताल्लुक भी हराम हो जाता, पर्दा तो खत्म हो जाता फिर निकाह भी हराम हो जाता, ठीक है ना। और मीरास के अहकाम में भी हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का वारिस करार दिया जाता, यानी एक अनएंडिंग जो है ना वो चेन रिएक्शन शुरू हो जाता। इस इल्तिबास को दूर करने के लिए आखिर आयत में फरमाया वा उलुल अरहाम बाउहुम औला बिबाउदिन फी किताबिल्लाह, यानी रिश्तेदार किताबुल्लाह यानी हुक्म शरी। जैसे कि आप उसूल फिकह में जानती हैं कि किताबुल्लाह का मतलब क्या होता है, शरीयत के अहकाम उसमें होते हैं, तो किताबुल्लाह यानी हुक्म शरी में एक दूसरे से मीरास का ज्यादा ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, बनिस्बत दूसरे मोमिनीन और मुहाजरीन के, मगर ये कि तुम अपने इन दोस्तों से बतौर वसीयत के कुछ सुलूक करना चाहो तो वो जायज है। यानी आप किसी गैर को जो कि आपका वारिस ना बनता हो उसको वसीयत तो कर सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन विरासत जो है वो तो सिर्फ रिश्तेदार को ही मिलेगी, ठीक है ना, जिसके साथ आपका ये कानूनी ताल्लुक है या खून का ताल्लुक है, सिर्फ उसी को मिलेगी। सारे मोमिनीन मोमिनात आपके वारिस नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो बनिस्बत दूसरे मोमिनीन और मुहाजरीन के, मगर ये कि तुम अपने दोस्तों से बतौर वसीयत के कुछ सुलूक करना चाहो तो वो जायज है। ये बात लौह महफूज में लिखी जा चुकी है कि इब्तदाई हिजरत में ईमानी अखुवत की बिना पर मुहाजरीन को अंसार की मीरास का हकदार बना दिया गया था, मगर बिल आखिर तकसीम मीरास रिश्तेदारी और अरहाम की बुनियाद पर रहेगी, ठीक है। अरहाम यानी जो रहम के ताल्लुकात होते हैं, ब्लड रिलेशनशिप्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम रोकते हैं, मारूफ मसाइल इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ के फिर आगे का तर्जुमा करेंगे। तर्जुमा जो है वो आयत नंबर 7 से लेकर के आप लोग तैयार कर लें, अगले तो बहुत लंबी आता आता है 7 से लेकर 27 तक, नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा करें कि 7 से लेकर के अच्छा ये तो वो है सूरह जंगे खंदक का वाक्या शुरू हो जाता है, और ये तो बहुत लंबा चलेगा, यानी इसमें बहुत सारी है ना, बयान तो बहुत सारे हो चुके हैं इसके ऊपर, 3 साल गुजर चुके हैं लेकिन इस बात को, तो फिर ऐसा करें 7 से लेकर के ना आप इसी, फिर जो गज़वे खंदक का वाकया है तो इसको आधा आधा कर लेते हैं, क्योंकि वाकया तो पूरा एक ही है, मुकम्मल वाकया है, तो लेट्स से 7 से 14 तक तैयार कर लें, ठीक है, 7 से लेकर आयत नंबर 14 तक तर्जुमा तैयार कर लें, 14 से आगे फिर नेक्स्ट बुक देखेंगे। अच्छा एक और बात ये है, जनरल है वैसे तो, आप में से किसी ने अगर सवाल किया है, मशवरा मांगा है, तो वो अलग से उसका जवाब आपको ड्यू है, लेकिन एक जो है वो एक सोर्ट ऑफ समझने के साथ जिसने कैंपेन चलाई हुई है, ठीक है ना, बस अपने तौर पर क्लासों के अंदर ही बस जो जानने वाले हैं स्टूडेंट्स हैं उन्हीं से बात हो रही है, कोई बाकायदा कोई फॉर्मल तरीका तो नहीं तैयार किया उसके लिए, लेकिन एक कैंपेन ये स्टार्ट की है कि जिनके भी घर में बच्चे हैं 11-12 उम्र साल की उम्र से ज्यादा के, ठीक है ना, और अभी तक आपके हाथों के तहत हैं, यानी आपके घर में रहते हैं, आप ही के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो कोशिश करें कि उनको ना किसी दर्जे में सर्फ शुरू करवा दें कम अज कम, ठीक है ना, सर्फ ना दोनों शुरू करवाना चाहें करवा दें आपकी मर्जी है, लेकिन कम अज कम सर्फ शुरू करवा दें, ठीक है ना, तो बाकी उम्मत का ख्याल बाद में करें, ठीक है, पहले अपनी औलादों का, और अब तक जितनी आप तरबियत कर रही हैं और जितनी आपने बाकी काम किए हैं अल्लाह ताला उस पर आपको जजाए खैर दे, और इसमें आगे भी जाहिर है काम करने की जरूरत होती है, लेकिन अगर आज तक आपने अरबी ग्रामर पढ़ानी नहीं शुरू करी है तो अब जो है ना उनको किसी तरह से रागब करके या जो भी तरीका इस्तेमाल करें तो आप अपने घर में पढ़ाना शुरू कर दें। मुझे पता है कि आप में से कम अज कम दो के घर के अंदर तो ऐसे बच्चे मौजूद हैं, और बाकी जो हैं वो अगर उनको मुमकिन हो अपने खानदान में किसी को पकड़ लें, ठीक है ना, उनको कहें कि पुरानी वोकैबलरी में आपको पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है, आपको कुरान के अल्फाज जो हैं वो समझा रही हूँ, तो वो अल्फाज समझने के लिए तो इल्मुस सर्फ पढ़ना पड़ता है, अब इल्मुस सर्फ जो है वो आप मौलाना चरथावली की किताब से पढ़ाएं या जो है वो चार्ट्स बना बना करके पढ़ाएं, जो भी तरीका इस्तेमाल करें आपके ख्याल में जो भी आसान तरीका है, हम भी कोशिश तो कर रहे हैं, नियत तो करी हुई है कुछ चार्ट्स वगैरह बनाने की, लेकिन मसरूफियत और ज्यादा बढ़ गई है रिसेंटली, तो वो चार्ट्स का काम भी जो है वो पता नहीं 1-3 हफ्ते हो चुके हैं वो वैसा को वैसे पड़ा हुआ है। एनीवे अगर वो चार्ट्स हमसे बन गए तो आपके साथ भी हम शेयर करेंगे जरूर इंशाल्लाह, ठीक है, तो इसके ऊपर क्लास खत्म करते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।